संतप्त मानस शांत हूँ। जिनकी गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन बिसरे हमारे ध्यान में। पेज नंबर 194 नीचे से तीसरा पैरा। इसलिए यद्यपि आत्मस्त वस्तु ज्ञान मात्र है, तथापि उसमें उक्त तत् अतत्पना आदि भी विद्यमान ही है, क्योंकि उक्त ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकायमान ज्ञान स्वरूप से तत्पना और उसमें प्रकाशित होने वाले अनंत पररूप ज्ञेयों के उससे भिन्न होने के कारण उनसे या उनकी अपेक्षा अतत्पना है। कहते भगवान आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान मात्र है, लेकिन उसमें जो अनंत ज्ञेय झलकते हैं तो अपने ज्ञान से वो तत्स्वरूप है और बाकी ज्ञेयों से अतत्स्वरूप है। अब ये अज्ञानी क्या करता है कि उन ज्ञेयों अपने ज्ञान को ज्ञेयों में शामिल करके अपने ज्ञान स्वभाव से तत्पने से इंकार कर देता है, तो एकांती होकर के नाश को प्राप्त होता है। तो अनेकांत ज्ञान उन ज्ञेयों से भिन्न है ऐसा प्रकाशित करके अपने अनेकांत की स्थापना करके उसे जिंदा रखता है। फिर दूसरा अज्ञानी वो ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं तो जो झलकने वाले ज्ञेयों को भी अपने में शामिल कर लेता है और इस तरह पररूप से जो अतत्पना है वो उससे इंकार करके एकांत को प्राप्त होता है। तो ये दूसरा बोल कि पर से अतत्पना है उसकी अनेकांत की स्थापना करके और उसको नाश होने से उसे बचा लेता है। ये दो बोल तत्पना और अतत्पना के ये पहले हैं। देखो तात्पर्य यह है ना कि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु ज्ञान रूप ही है, पर गे रूप नहीं। ये पर माने परंतु वाला पर नहीं है कि पर पदार्थों वाला पर है। ज्ञान रूप ही है पर गे रूप नहीं। इस प्रकार स्वरूप से तत्पना और पर गे रूप से अतत्पना आत्म वस्तु में एक साथ ही विद्यमान है। ये दोनों चीजों को एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। वो अनंत ज्ञेय उसमें रह रहे उसकी बात नहीं है, उन ज्ञेयों की तरफ से वो तत्व नहीं है। कि दर्पण में सामने के जितने पदार्थ हैं वो सब झलके। अब या तो हम क्या करें कि वो जो पदार्थ है ना, तो जब दर्पण में झलकते हैं तो असलियत में दर्पण तो दिखता ही नहीं है, उसका एक एक अंश वो पदार्थ ही दिखते हैं सामने वाले, पूरे फूल पत्ती हैं जो भी हैं वो सब वही दिखते हैं। तो ये वो जो दिखने वाली फूल पत्तियां जो भी सामने हैं, मैं इस रूप हूं तो ऐसा मानकर कि मैं तो दर्पण स्वरूप हूं, जो ये दिख रहे इस रूप नहीं हूं और दर्पण का ये स्वरूप नहीं है, ये पहला बोले। और दूसरे में कि वो अपने ज्ञान को अनुरूप माना, पहले में तो ज्ञान के तत्पने से इंकार किया और दूसरे में उनको ज्ञान में शामिल कर लिया। तो सगरे सब मैं हूं, तो ऐसा करके जो पर से उनसे जो अतत्पना था उनसे इंकार किया तो तब वो नाश को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक साथ रहने वाले अब ये तो उन्होंने उदाहरण सिद्धांत पर घटित किया, अब वो घटित कर रहे हैं। एक साथ रहने वाले गुण और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंश यानी गुण और पर्याय के समुदाय रूप अविभागी द्रव्य की अपेक्षा आत्मा में एकत्व एतत्पना और अतत्पना घटित किया था। अब एकत्व और अनेकत्व घटित कर रहे, फिर नित्यत्व अनित्यत्व घटित करेंगे, है ना। ऐसा जैसा सातवां बोल जो है ना, सात को या चौदह को वो घटाएंगे, चार घटा रहे अभी तो। कौन? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव संबंधी। तो एक गुण पर्याय से प्रवर्तमान जो द्रव्य है उसकी अपेक्षा अविभागी एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान गुण और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशरूप पर्यायों को की अपेक्षा आत्मा में अनेकत्व है। तो इसमें देखो, फिर पढ़ो। इसी प्रकार एक साथ रहने वाले गुण और क्रमशः प्रवर्तमान पर्याय अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अभिभागी द्रव्य की अपेक्षा आत्मा में एकत्व है। और अविभागी एक द्रव्य में व्याप्त सहभूत प्रवर्तमान गुण और क्रमशः प्रवर्तमान पर्यायों अनंत चैतन्य अंश रूप पर्यायों में से अनंत गुणों पर्यायों की अपेक्षा देखें तो आत्मा अनेकत्व है। माने पर्यायों और गुणों के भेद रूप देखेंगे तो अनेकत्व है, और इनके अखंड पिंड रूप आत्मा को देखेंगे तो एकत्व है। ऐसा एकत्व और अनेकत्व दोनों हैं। अब इसी प्रकार स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप होने से की शक्ति रूप से जो स्वभाव है, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव रूप होने की शक्ति से जो स्वभाव है, उस स्वभाव वाला होने से आत्मा सत्व स्वरूप है। ये वो तत्स्वरूप था, ये सत्स्वरूप है। और परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और परभाव रूप न होने की शक्ति से जो स्वभाव, उस स्वभाव वाला होने से आत्मा असत्व स्वरूप है, है ना। और इसी प्रकार अब ये काल संबंधी आया, ये नित्य और अनित्य होता वो काल संबंधी। इसी प्रकार अनादि निधन अविभागी एक वृत्ति रूप परिणत, देखो अनादि निधन, अनादि निधन माने अनादि अनंत। ये वास्तव में आदि और अंत ये दो शब्द हैं मूल में। अब आदि से बनता है अनादि, उसे नेगेटिव बनाना हो तो, और अंत से बनता है अनंत, तो अनादि अनंत हो गया ना। अब इनने क्या किया, अब निधन शब्द है इसमें कि अनादि और अनिधन। तो चूंकि अनादि की आदि और निधन की निधन, जो आदि निधन था ना, तो एक दो जगह जो अन लगा था उसको एक कर दिया और सबसे पहले लगा दिया, तो वो हो गया अनादि निधन। दिखता तो ऐसा है कि निधन माने मौत जैसे, लेकिन वो अनिधन है, अनादि अनिधन। तो अनादि निधन कहा है वस्तुएं अविभागी। अब अनादि निधन की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये कालवाचक है। कालवाचक होने से अनादि आदि से लेके अंत तक एक अविभागी, इनमें कोई विभाग नहीं करो, ये भूतकाल, ये वर्तमान, ये भविष्य, अविभागी एक वृत्ति रूप परिणत। अपन क्या समझते हैं, बदल रहा वो तो परिणत परिणति है, इसको भी परिणति बोलते हैं। यदि वो प्रति समय बदल रहा है तो प्रति समय नहीं बदलना भी, इसमें एक कंटिन्यूटी भी है, उसे अनुस्यूति से रचित प्रवाह बोलते हैं। और तो अनुस्यूति से एक वृत्ति रूप परिणत होने से आत्मा नित्य है। और अब क्रमशः प्रवर्तमान एक एक समय की मर्यादा वाला जो पर्याय है, वो अनेक वृत्ति अंशों के रूप परिणमित होने के कारण आत्मा अनित्य है। वही आत्मा एक साथ उसी तर्क से वो पर्याय अलग अलग भी हैं और जुड़ी हुई भी हैं। तो इन प्रजाओं को मैं उदाहरण देता हूं, संगमरमर की माला। अब कहेंगे संगमरमर की माला आप क्यों कह रहे हैं, माला ही तो माला भी दिया आचार्यों ने, जो मैंने उसमें थोड़ा करेक्शन और किया। संगमरमर की माला का मतलब यह है कि संगमरमर का इतना बड़ा एक पत्थर था और उसमें जगह 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 फूल निकाले एक ही पत्थर में अलग, तो उनके अंदर जो डोरा है वो भी उसी संगमरमर का है। मतलब एक डोरा अलग से डालें और वे फूलों को अलग से परोएं, तो वो तो जो असली माला जो बनती है मणियों की माला फूलों की माला वो तुमने देखी है, और ये भी देखी है कि मंदिरों में तो ऐसी वो बनते हैं ना दरवाजे पे जो लगे उसमें लगे रहते हैं, तो वो कुछ हिस्सा जुड़ा रहता है और कुछ हिस्सा अलग अलग रहता है ना, अलग अलग दिखता है। तो वो कहते हैं कि जैसे वो अलग अलग है ना लटकने वाले कलशे उसमें जो भी हैं, और वैसे ही वहां वो संगमरमर अखंड भी है। ऐसी जो अनंत अनादि अनंत पर्याय हैं उनमें एक एक पर्याय दूसरी पर्याय से अलग अलग है, तो उनमें उसी द्रव्य स्वभाव से एक अखंडता भी है। जो वो अखंडता है वो नित्यता है, और जो जुदापन है वो अनित्यता है। वस्तु में ऐसा पढ़ा है तो क्षेत्रीय अपेक्षा तो लोगों को ये बात समझ में आ जाती है, तो काल की अपेक्षा समझ में नहीं आती है। क्षेत्र क्षेत्र की अपेक्षा कैसी, कि जो आकाश के जो प्रदेश है अनंत लोक आकाश के आकाश के, तो आकाश के क्यों ले रहे, आत्मा के क्यों ले रहे, आत्मा के सिमट जाते हैं ना अलग अलग हो जाते हैं, अब ये तो बिल्कुल एक से रहते हैं। तो जैसे वो प्रदेश एक दूसरे से अलग हैं, अलग नहीं होते तो हम अनंत प्रदेश के असंख्य प्रदेश की गिनती कैसे करते हैं, समझ में ना। हमने गिनती की कि आकाश अनंत प्रदेश ही है, लोकाकाश असंख्य प्रदेश ही है, इसका मतलब वो प्रदेश अलग अलग हैं, लेकिन वो जुड़े हुए भी हैं, वो बीच में कहीं स्पेस नहीं है, है? तो वही उनकी अखंडता है और वही प्रदेशों की अलगता है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश और जो भी ये समझ लो श्रीलंका यहां जो नेपाल भूटान जो चारों तरफ है अपने देश, तो ये अलग अलग हैं कि इकट्ठे हैं। तो हम जाते हैं तो कहीं भी ऐसा दर्कन नहीं है कि ये पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान है, तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और फिर जो हमने वो सीमा रेखा खींची है ना, और उससे बिल्कुल ये पाकिस्तान है ये हिंदुस्तान है अलग अलग हो गए। तो कहते ऐसा बिल्कुल हमने वो लिखा तो हमने बनाई, लेकिन ये तो वस्तु में ही बनी हुई है। क्षेत्र की अपेक्षा अखंडता और क्षेत्र की अपेक्षा अलग बना, क्षेत्र की अपेक्षा अलग बना, ये दोनों चीजें हर वस्तु में है। अब अपन ने आकाश पर घटित करी, अब अपन आत्मा पर घटित करो, थोड़ा और आनंद आएगा। कैसे आएगा, जब आत्मा के असंख्य प्रदेशी हाथी के शरीर में भी फैल जाते हैं और चींटी के में भी आ जाते हैं और सारे लोग आकाश में भी फैल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब ये लोक पूर्ण होता है तो उस वक्त पूरे लोकाकाश में फैल गया, तो उससे समझ लो कि आत्मा के प्रदेशों की गिनती हो गई। जितना क्योंकि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश रहा, किसी पर भी दो नहीं है। अब और ज्यादा फैलना चाहे तो ये नहीं फैल सकता, जितना फैलना था फैल गया। तो एक आकाश के प्रदेश में दो भी नहीं है और हर एक में है, तो उतने ही प्रदेश हैं, एक गिनती इनकी पक्की हो गई। अब ये रही कि ये जब अखंड हैं कि अलग अलग हैं, तो कहते हैं कि जब हमने घड़ी कर दी है इनको, जैसे जैसे रूमाल की घड़ी कर दी, तो अब ये प्रदेश कैसे इकट्ठे हैं कि अलग अलग हैं, कैसे हैं। तो वो कहते हैं कि देखो ये बिल्कुल इकट्ठे भी हैं और अलग अलग भी हैं। क्यों? कि इसके जिस प्रदेश के बाद जो प्रदेश था, हम चाहे जैसा करें इसे, तो उसके बाद वही रहेगा। रूमाल में से एक दाना है, एक दाना है ना। अब जो उसके अपन नाम रख दें और उनकी हम अलग अलग पहचान कर लें, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक काला रंग का, फिर एक नीला रंग का, एक पीले रंग का, एक ऐसे हो सकते हैं ना। तो अभी इसे हम चाहे ऐसा करें ऐसा करें, चाहे जैसे रूप में बदल दें, लेकिन वो जिसके पास जो है उसके बाद वो ही रहेगा। ये अखंडता है इसकी। और इसे यदि हमने फाड़ा, यदि वो हमने बदलना है, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। यदि द्रव्य के क्षेत्र को हमें बदलना है, तो द्रव्य को क्षेत्र की अपेक्षा तोड़ना पड़ेगा। और यदि काल बदलना है, तो हमें काल की तरफ से तोड़ना पड़ेगा। तो जो क्षेत्र की अपेक्षा अखंडता है और काल की अपेक्षा अखंडता है, वो कायम नहीं रह पाएगी। तो कहते अनादिकाल से आत्मा की काल की अपेक्षा खंडित तो हुआ नहीं, इसलिए उसमें अनुस्मृति से रचित एक अखंड प्रवाह है, वो तो कहीं भी स्खलन नहीं हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमको मोक्ष नाम की पर्याय चाहिए। ये झगड़ा कोई बाकी के पांच द्रव्यों में तो है नहीं, और अनादि से अपने में भी नहीं था, क्योंकि अपने को सोचने का कोई झंझट ही नहीं था। और समय दर्शन होने के बाद फिर भी नहीं रहना है। अब थोड़े बुद्धिमान होंगे ना, पढ़े लिखे, तो अब हमने पढ़ लिया है कि वो बहुत अनंत सुख स्वरूप पर्याय है मोक्ष में, और स्वर्ग में बहुत अच्छी सुख है, वो इधर दुख है। तो हम चाहते हैं कि ये पर्याय तो निकल जाए और वो पर्याय आ जाए। तो कहते हैं जितने तीन काल के समय हैं, उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की तीन काल की पर्याय हैं। तो कभी ऐसा जैसे क्षेत्र में नहीं हुआ ना, कि एक प्रदेश में दो प्रदेश भी नहीं हुए और एक कोई प्रदेश खाली नहीं रहा। तो काल की एक भी समय खाली नहीं रहना चाहिए और एक भी पर्याय नहीं बढ़ना चाहिए, मैंने दोनों बराबर बराबर होंगे। ऐसे होटल जैसी व्यवस्था नहीं है कि हमने बारातियों को ठहराया तो जितने कमरे बुक किए थे उसमें एक बराती बचा रहा, तो कहा दो दो ठहरा दो, तो दो दो ठहराए तो एक कमरा बचा रहा। तो ऐसा दुख तो नहीं ठहर सकते हैं, मेरा मतलब कहने का। तो अब हम तुम जो भी पर्याय जहां से हटा करके जहां लाना चाहते हो, नहीं तो कहीं से ला नहीं सकते। तो हमारे भविष्य में जो मोक्ष नाम की पर्याय है, हम उसे तोड़ के अभी यहां लाना चाहते हैं। तो यहां पर जो पर्याय मौजूद है वो कहां जाएगी, ये समस्या है। एक दो कट लग जाएंगे, एक जहां से उसे तोड़ के लाओगे एक कट तो वहां लग गया, और एक यहां की पर्याय को हटाओगे उसे लगाओगे दूसरा कट यहां लग गया, तो द्रव्य के तीन टुकड़े हो गए काल की अपेक्षा अखंड नहीं रहा। अब इससे भी काम नहीं चलता है। रहीम ने दुआ लिखा ना कि रही मन दुगुहा, रही मन डोरा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे ते फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर अपने आत्मा में गांठ पड़ जाएगी, ये तो जुड़ेगा ही नहीं, वो जोड़ोगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। वस्तु स्थिति तो एक बार न टूटना है न जुड़ना है। अब ये कहते हैं कि वो तो ठीक है, अब मोक्ष में जाने के बाद जो अनंत सुख वाली पर्याय थी ना, उसके बाद अनंत काल तक जो पर्याय आने वाली हैं, वो सब अनंत सुख रूप ही आने वाली हैं। अभी हमारे यहां क्या है, अभी जो पर्याय है और यहां से जो मोक्ष तक जाने की पर्याय हैं, जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं, ये दुख ही दुख रूप पर्याय हैं। तो इन्हें कहां ले जाओगे फिर, तुमने यहां ला करके उसे तो शुरू कर दिया, तो ये कहां जाएंगे तो फिर इन्हें मोक्ष में ले जाओगे, उन्हें आगे जोड़ना पड़ेगा। क्यों? जैसे पैर में की नसें निकाल के हाथ में लगा डाल देते हैं डॉक्टर लोग, क्या करोगे तो या तो मोक्ष में दुख हो जाएगा हम उसी पर जाएं इधर आ जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। मैंने वो पर्यायों को यहां लाना यहां की पर्याय को वहां ले जाना बिल्कुल संभव नहीं है। वो जुदी जुदी हैं तो हमारे दिमाग में जो जुदापन इतना हावी हो गया कि हम समझते हैं चाहे जो वो चाहे जहां ले जाएंगे चाहे जहां कर देंगे। फिर कहते हम काय बोले जाएंगे दुख रूप पर जाएंगे, मुश्किल से तो इनसे छुटकारा मिला, इनको कुएं में डाल देंगे, हम इनको नाश नहीं कर देंगे। ये समझता है, खेल समझता है। तो वो कहते हैं कि आत्मा उतनी लंबाई छोटी हो जाएगी, फिर तो वो अनादि अनंत नहीं रहेगा। एक रस्सी का ये बीज का हिस्सा आपने के साथ ये जर्जर हो गया है, इसको निकाल के फेंक दो और जो साबुत साबुत है उसे जोड़ दो तो रस्सी की लंबाई तो कम होगी ना। हाँ तो उन्हें करते हैं डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं, जितना हिस्सा सड़सड़ा गया है तो उसको तो कारपीट के फेंक देते हैं और बाकी उसको जोड़ देते हैं। तो जिसकी 10 फुट लंबी आंतें थी तो 5 फुट रह जाती हैं, तो उतने में से बेचारा माल निकलता है। ऐसी कुछ सुविधा नहीं है, न क्षेत्र की अपेक्षा और न काल की अपेक्षा। तो ये वस्तु का स्वरूप जो अनेकांतात्मक है इसकी समझ में आ जाए तो ये सारी समस्याएं हल हो जाए ना। कि कौन सी समस्या है, मां मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ऐसी समस्या है नहीं आया समझ। तो सूरदास जी कहते हैं कि वो हट करने लग गया श्री कृष्ण नाम का बालक कि मां मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, वो तो चंद्रमा वो खिलौना है ना आकाश में चंद्रमा, मुझे वो खिलौना चाहिए। अब कौन मां है जो उस आकाश के खिलौने ला करके उसे अपने बेटे को दे दे। तो उसने तरकीब लगाई, नहीं माना वो, तो उसने एक थाली में पानी रखा साफ नीट एंड क्लीन और बिल्कुल स्थिर करके रख दिया चुप है। और फिर देखा तो आकाश का चंद्रमा उस थाली में उसका प्रतिबिंब आ गया। बेटा बहुत खुश के बाद अब मेरे पास चंद्रमा आ गया। अब उसको कितना रोया है, घंटों रोया है, तब उसे मुश्किल से चंद्र खिलौना मिला है। और यदि ये फिर खो गया थाल में है ना, तो फिर मिलना द्वारा वो जानता है बहुत कठिन काम है। तो वो कहता उसे मैं घर में ले जाकर के रखूंगा अंदर। तो थाली को उठाए तो अंदर ले जाए, क्यों तो जाएगा, क्योंकि वो तो छत है, तो बीच में छत आ जाएगी तो उसमें वो परछाई रहेगी नहीं। तो अभी तो जब अंदर पहुंचेगी तब आएगी छत, तो अभी तो वो पानी की थाली को उठाते ही वो हिल जाएगा, हिल जाएगा तो वहीं भर जाएगा, वहीं से गायब हो जाएगा। वो तो पानी स्वच्छ है और स्थिर है तब उसमें वो चंद्रमा खिलौना दिखता है। तो ऐसा ही हद इस जगत के सारे अज्ञानियों को है। तो इसको इसे हमने थोड़ा समझा क्या दिया, एक मोक्ष नाम की पर्याय है वो अनंत सुख स्वरूप है, एक नरक नाम की पर्याय है वो महादुख रूप है। अब इसकी समझ में क्या आ गया, एक नई आफत खड़ी हो गई, क्योंकि इस मोक्ष की पर्याय तोड़ के लानी है और यहां की पर्याय को हटानी है। समस्या समझ रहे ना, सारे अज्ञानी जगत की ये है। मैं ये बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि अनेकांत साधवाद के ये 4 बोल के 14 बोल समझने से क्या लाभ है। द्रव्य की अखंडता, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, और भी जो बोल उनने दिए हैं, उन सब अपेक्षाओं से यदि हमारी समझ में आ जाए तो फिर हमारे सारे विकल्प टूट जाएं। यदि उस बच्चे को इस गलत रास्ते पर माना चढ़ाए, कौन सा गलत रास्ता, कि वो थाली लाए, उसमें पानी भरे اور پھر دکھایا کہ دے آئے مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا. وہ تو سمجھتی میری سمسیا حل ہو گئی, وہ 15 منٹ کھلکھلا کے ہنسنے لگ گیا نا, تو اس میں تو میری سمسیا حل ہو گئی. اب پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک سمسیا کتنی سمسیا کھڑی کرے گا, یہ سمبھو نہیں ہے. ارے تو راستہ کیا تھا بولو تم, کیا تھا راستہ؟ ایک ماتر راستہ یہ تھا کہ چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڈھا ہو چاہے جوان ہو, اس کو یہ سمجھایا جاتا کہ وہ چندرما یہاں سے بہت دور ہے, وہ کوئی ہمارے آگیا کی بات نہیں ہے, ہم اسے لا سکیں ایسا نہیں, بھگوان بھی نہیں لا سکتے, کوئی جگت میں ایسا وستو کی ویوستھا ہی نہیں ہے کہ بھگوان سے کہتے بھگوان لا دیں گے. اب تم نے پہلے اسے زہر بھرا کہ بھگوان سب کر سکتے ہیں, اس سنیما میں دکھا دکھا کر کے وہ ایک کون سے اسپائڈر مین بولتے کیا بولتے بہت تختی تالی کوئی ایک آدمی بتاتے ہیں کہ وہ دنیا کے سارے کام کر کے لا سکتا ہے, اور ان کے دماغ میں گھسیرتے ہیں کہ ایک ایسا دوائی ہے کہ دنیا میں سب کام کر سکتا ہے. وہ کہتا اس سے کرا دو. ارے وہ تو اتنا ساگت والا کوئی آدمی ہے, وہ پھر وہ تیری آگیا میں اور میری آگیا میں ہے کیا؟ اب اس کے دماغ میں یہ گھسی ہوئی ہے کہ وہ طاقت والا سب کچھ کر سکتا ہے, اور بس مجھے کہنا اور ممی کو تو کہنا ہے, بس ممی نے کہا اور ہو گیا بس ختم. تم اسے اپنی ماں سے بڑا اس جگت میں کوئی دکھتا ہی نہیں ہے, ساری کرتا دھرتا سب جگت کی وہی ہے. یعنی یہ جو اجان اس کے دماغ میں گھس گیا ہے کہ یہ میری ماں نام کی جو پرانی ہے یہ دنیا کی سب چیزیں لا کر مجھے دے سکتی ہے, آخر کار ایک ہی بات سمجھانی پڑے گی کیا, کہ بھئی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میں جو ہے وہ ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. ہے کی ناشتی نہیں کر سکتی اور اصلی کی ناشتی نہیں کر سکتی, تت کا اتت نہیں کر سکتی, اتت کا تت نہیں کر سکتی, ست کا اسد نہیں کر سکتی, اسد کا ست نہیں کر سکتی, کچھ نہیں کر سکتی. جو ایکتا ہے اس کو انیک نہیں کر سکتی, انیکتا ہے وہ دونوں چیزیں وستو کے سوبھاؤ میں ہیں, اور سوبھاؤ اترگ گوچراو ایسی کیوں ہیں کہ اس میں کوئی ترک نہیں ہوتا. بس یہ اگنی گرم ہے جگت میں, پانی ٹھنڈا ہے, پانی کو اگنی پہ ڈالو تو اگنی بجھ جاتی ہے, پھر بیچ میں ایک برتن آ جائے تو وہ اگنی پانی کو جلا ڈالتی ہے, ایسا ہے ختم ختم. تو پھر ہمارا تمہارا کیا کام ہے, اسکولوں کا کیا کام ہے یہ سب سمجھائیں ہمیں؟ کہ ان کا یہ کام ہے کہ یہ سمجھائیں کہ وستو ایسی ہے, مانے ستیہ سمجھائیں. وہ نہیں مانے روئے ہٹ کرے تو ہم کوئی اسط بات میں ہاں بھر لیں اور اس کی بتانے کر دیں, یہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیں مانے گا نہیں, روتے ہی رہے روتے روتے کیا کریں ہم, کیا کریں؟ نہیں اگر کچھ تو کرنا, کچھ کرنا کیسے پڑے گا جب تیرے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. میرے کہنے کا ارتھ ہے پھر تو وہ کچھ بھی کہے گا کہ ایک منٹ میں اسے گرا دو پھر بنا دو, وہ بیرول اکبر جیسا قصہ ہو جائے گا کہ ایک دم گھومتے گھومتے اکبر بیرول کے گھر پہنچ گئے تو ان کا بچہ بہت رو رہا تھا, اور بھائی لیٹ ہو گئے تھے آنے سے دربار میں کیونکہ بچہ رو رہا تھا مان نہیں رہا تھا اور زبردستی لیٹ ہو گیا. تم کیسے آدمی ہو, تمہیں کیا کمی ہے, تمہیں تنخواہ میں کچھ کم ملتی ہے؟ جو بچہ کہتا ہے وہ دے دو نا, تمہیں کیا کمی ہے؟ آخر تم میرے منسٹر ہو. کہ بچہ رونے لگ گیا اس لیے میں دیر ہو گیا, ایسا نہیں چلتا صاحب, آپ کر لو. تو کیا کریں کہ میں بچہ بنتا ہوں اور آپ بن جاؤ پتا جی, اور میں ہٹ کرتا ہوں آپ مجھے سمجھا لو, سمجھا لو جو دے کر کے سنتشت کر لو, جو بھی کر لوں تو بتا یہاں کر لیں گے, ہم تو سمراٹ ہیں کر لیں گے. تو بولو اچھا کہ میں تو چاول کھاؤں گا دال کے ساتھ میں, ڈال لائے چاول لائے کہ ملا ہوا کھاؤں گا. تو ملا دیا تو رونے لگ گیا, نہیں مجھے تو الگ الگ چاہیے. تو ابھی دوسرا بھی الگ دے دیتے ہیں, چاول یا دال دوسرا نہیں, میں تو یہی دوں گا. وہ اس کو الگ 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 کر, الگ الگ کہہ دو پھر ملا دو. آخر کار اس طرح کی ویرکتا کی باتیں آئیں گی تو انت میں کیا کرنا پڑے گا, میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو یہ ماتا دادا نے کہیں ہم سے پوچھو, ڈر کہاں کا لگا جو اسے آ جائے گی کل ٹھکانے. ارے آ گئی ہوتی ہے اکل ٹھکانے آج تک, تو ایسے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. راستہ تو ایک ہی ہے کہ جو پرم ستیہ ہے شانتی سے اسے ہی سمجھاؤ. کہ وہ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے کا سوال ہی نہیں کھڑا ہوتا, اپر پرشن ہی کھڑا نہیں ہوتا. جو وستو کا سروپ ہے میرے کہنے کا مطلب, انتدو گتا اسے ہی سویکار کرنا پڑے گا. جو جیو سویکار کریں گے وہ سکھی ہوں گے, جو سویکار نہیں کریں گے وہ سکھی نہیں ہوں گے. وستو سروپ کے ورودھ جو کرنے کا پریاس جس نے کیا ہے, ہم نہیں تھوڑا کہہ دو پھر نہیں, یہ نہیں, ایک قدم بھی یدی غلط چلے آپ تو وہ اور دس سمسیائیں نہیں کھڑی کرے گا. ارہنت بھگوان بھی انت بیر کے دھنی, لیکن ایک پدگل پرمانو کو یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے. ایک سمے کو چینج کر کے یہاں سے وہاں پریائے کو نہیں کر سکتے. ایک کالے وال کو سفید نہیں کر سکتے, ایک سفید وال کو کالا نہیں کر سکتے. سارے تیرتھنکر سدھ شلا میں بیٹھے جو موکش میں چلے گئے نا, یہ سب مل کے یہ پرم ستیہ وستو کا سروپ ہے. اس پرم ستیہ وستو کے سروپ کو سویکار کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پہلے ہمارے دماغ میں تو یہ بیٹھنا چاہیے, نہیں نہیں نہیں, پہلے تو ایسے سمجھایا جاتا ہے, پھر بعد میں جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تب ایسا سمجھایا جاتا ہے. یہ جو ہم نے راستے الگ الگ بنا لیے ہیں نا, پر یہی سب سے بڑی خراب ہوا. اب انہوں نے اتنا بڑا کوڑا اکٹھا کر دیا ہے, کیسا یہ ہمارے پہلے پنڈتوں نے کہ بھائی یہ تو وہاں جا رہا ہے مسجد میں, بھگوان اللہ ایسا کر دیتا ہے ویسا یہ کر دیتا ہے, تو اب کیا کرو. تو راستہ تو ادھر سمجھاتے کہ کوئی کچھ نہیں کرتا, کر ہی نہیں سکتا. ہم نے کیا اختیار کیا, ارے اپنے وہاں بھی ہیں جو اللہ کر سکتا, اپنے وہاں بھی نہیں کر سکتے, یہ کم ہے. چلو ارے لبل لگایا کہ سب ان کا کر دیا تھا, سری پال کا فلانے کا یہاں کا, اور پھر دو چار ادھارن دے دعا کر کے خوب اس کو زہر بھرا کہ اب کر کے اب کہتے کرو. اور بھگوان نہیں کرتا ہے تو وہ مورتیاں توڑتا ہے, پھر وہ کیوں نہیں کرتا ہے جی. یعنی پہلے تو کہتے سمجھا دو, جینیوں نے بھی سب پنڈتوں نے مل کے مہاراجوں نے مل کے یہ سماج کو سمجھا دیا کہ ہمارے بھگوان سب کچھ کرتے ہیں, سب کر دیں گی, ایسا ہے یہ مانگو, فلانا بدھان کرو تو یہ ہو جائے گا, فلانا کرو تو یہ ہو جائے گا. اب اتنا زہر بھر دیا اور بھرے جا رہے بھرے جا رہے, کیا کرے بولیے. تو وہ کہتے ہیں یہ وستو کا سروپ ہے, ہم کو پرم ستیہ بات سمجھنی پڑے گی. کہ اب کیا ہے پرم ستیہ بات یہاں, کہ یہ انت گے ہیں جگت میں, بے گیان میں جھلکیں گے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ انہیں گیان میں جھلکنے سے روک دیں. انت تیرتھنکر مل کر کے بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک پرمانو کو جو ان کے گیان میں نہیں آ رہے. وہ جو سمیر پربت کے اندر میں سونا لگا ہے بالکل شدھ, اندر بھیتر ہے سونا, वो सब अरहंतों सिद्धों के ज्ञान में 24 घंटे आया, तो उसे देख देख के हमारे मुंह में पानी भर जाता है। देखो उस सोने को ज्ञान में आने से तुम रोक नहीं सकते और उसे एक जिंदगी में कभी निकाल नहीं सकते, सब अरहंत सिद्ध मिलकर के। कि तुम ऐसे भगवान बताओगे कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं? हाँ ऐसे ही भगवान तो ऐसे ही हैं, सभी भगवान ऐसे ही हैं, हम अपने भी और उनके भी ये भी हैं कि तो यदि वो भगवान हैं और वस्तु है तो वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। अब जितना जितना तुम्हें ठोकना हो गलती सीधी उल्टी सीधी बातें तो ठोक लो, कर लो, जितना अज्ञान खड़ा करना हो उतना कर लो, बस खत्म, और तो क्या कर सकते हैं। देखो अनादि अनंत वाला पढ़ रहे थे, इसी प्रकार अनादि निधन अविभागी एक वृत्ति रूप परिणत होने से आत्मा नित्य है और कर्म सा प्रवर्तमान एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति अंशों रूप से परिणत होने के कारण आत्मा अनित्य है। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु में तत्पना अतत्पना एकपना अनेकपना सत्वपना असत्वपना नित्यपना अनित्यपना आदि परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली दो दो शक्तियां धर्म स्वयमेव प्रकाशित होती हैं, इसलिए अनेकांत ही स्वयमेव ही प्रकाशित होता है। तुम्हें क्या करना है, वो तो स्वयं वस्तु चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं ये हूं। कि साहब मैं कैसे समझाऊं इसे कि अग्नि गर्म है? अब मेरे मूर्ख क्या करें, वह अग्नि चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि मैं गर्म हूं। ये क्या कह रहे हो, वस्तु स्वरूप अपने अनेकांतपने को स्वयं ही प्रकाशित कर रहा है, ये कह रहे। तो ये क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ उधर को ध्यान दिलाना है, और जाएगा उसका ध्यान, भाग्य होगा, उसकी काललब्धि आएगी तो जब समझ जाएगा, नहीं आएगी जब तक नहीं समझेगा। तो मैं समझा दूंगा, इस अभिमान को तुम छोड़ दे। अब कहते हैं सब विद्वान अभी ऐसा भी कहते हैं, समझाने से समझ में नहीं आता, समझने से समझ में आता है। आखिर हाथ जोड़ के वहां भी कहेंगे काल लब्धि आए बिना अनंत पुरुषार्थ करो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। है क्या, जब वो समझने की काल लब्धि आ जाएगी तब समझ में आएगा, समझने से समझ में आता है क्या रह गया? बोलो केवल ज्ञान में नोंद है, कलश टीका का लिखते हैं। अपन क्या कर रहा है, इधर किधर धक्का मार के उधर डाले, उधर धक्का मार के इधर, इधर धक्का मार के यहां ले जाए, यहां करके बैठे थे। कोई बच्चे को बरगर आते हैं, मम्मी कहती पापा कह देंगे, पापा पापा कहते नहीं मम्मी कर देगी, जब दोनों परेशान हो जाते तो दादा जी कर देंगे, भेजो किस दादे को वो मरेगा, वे रोएंगे ये रोएगा, ऐसा ही है। अब आचार्य जैसे इनका तो अपने पढ़ लेना मुख्य नहीं है, शायद अब देखो कहां निकालना है मैं बताता हूं। इसमें और इसमें जो तुम्हारा ये है ना, इसमें एक अंतर है, वो मैंने बहुत माथा मारा था तब वो ऐसा किया है कि इसमें तो क्या है कि पूरे गद्य के 14 बोल एक साथ हैं और फिर पद्य के 14 बोल एक साथ हैं। अब मैंने इसमें क्या किया है कि पहले गद्य के 2 बोल समझाए, फिर उन्हीं के साथ पद्य निपटा दिया, तो वही बात उन पद्यों में कही है जो गद्य में कही है। अब जब उन्हें अलग पढ़ेंगे तो फिर दूसरा समय था तो शुरू हो जाएगा अलग। अंदर समझ में आया कि नहीं आया, किसी की समझ में नहीं आता क्या किया, कैसे किया, क्या किया, क्या कहा मैंने, बोलो भाई खड़े हो। ये जो गद्य और पद्य दोनों है ना, वही बात गद्य में कही है, वही पद्य में, लेकिन इसमें 14 गद्य में अलग कह दी, फिर 14 पद्य अलग लिख दिए। मैंने कहा ये दो दो को जोड़े से नित्य अनित्य का गद्य में जो समझाया था वो, और नित्य अनित्य वाला छंद भी वही, लाकर की समझ में आया। देखो अभी आया, अभी पेज निकालो 199 नीचे से दूसरी पंक्ति। इसके ऊपर के मैं दो पहले पढ़ लेते हैं कि इसमें जो निष्कर्ष मैंने अपन ने बीच में जो कोटेशन दिए ना गुरुदेव की जयसेन की वगैरह की, उनको अपन ने सब छोड़ रहे हैं। फिर अब निष्कर्ष ये है कि तत् और अतत, एक और अनेक, सत और असत, नित्य और अनित्य, यद्यपि ये सभी धर्म परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं पर वस्तुतः परस्पर विरोधी हैं नहीं। अब यदि जी परस्पर विरोधी होते तो एक अलग समस्या थी, समझ आई ना। अब मालूम पड़ते हैं कि विरोधी हैं और हैं नहीं, तो अब तो सिर्फ वो मालूम पड़ने का इंतजाम करना है, माने इसमें हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है करने की समस्या नहीं है। मेरा मतलब वस्तु को हमें बदला बदली नहीं करनी है, बस उन्हें मालूम पड़ते थे कि जे जैसे परस्पर विरोधी हैं, वो विरोधी तो उनके थे ही नहीं, तो उन्हें विरोध मिटाना ही नहीं है, वैसे विरोधी मालूम पड़ते हैं वो बस खत्म। क्योंकि वस्तु में एक साथ ही रहते हैं, अब एक साथ रहते हैं तो विरोधी कैसे होंगे, सहज हैं, पर मतलब सहजता से रहते हुए जबरदस्ती नहीं रहते हैं, आत्मा के स्वभाव हैं और आत्मा में स्वाभाविक रूप से ही रहते हैं। यद्यपि ये सभी धर्म एक ही वस्तु में एक साथ ही रहते हैं तथापि इनको जानने या कहने में अपेक्षा लगाना अत्यंत आवश्यक है, तो उसके बिना फिर वो अज्ञान फैलता है, क्योंकि अपेक्षा लगाए बिना ना तो इन्हें समझा ही जा सकता है और ना समझा जा सकता है और ना समझाया जा सकता, और ना कहा जा सकता, लिखा ना, समझाने के लिए कहना पड़ता है, तो ये समझना समझ अपेक्षा लगाओगे तो काम होगा। अब आगे आत्मख्याति टीका में आत्मा के संदर्भ में उक्त स्यादवाद ही को ही शंका समाधान द्वारा विस्तार से स्पष्ट करते हैं। अब वो जो अपन ने इतना स्यादवाद समझा है, अब उसमें भी कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं। ननु यदि यहां से प्रसिद्धयति, संस्कृत में टीका है ना, वो इतना हिस्से को अपना पढ़ रहेंगे। यदि ज्ञान मात्रता होने पर भी आत्मा के अनेकांत स्वयमेव प्रकाशित होता है तो फिर अरहंत भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत माने स्यादवाद का उपदेश क्यों देते हैं। ये वो कहते तुम अपने आप ही वस्तु प्रकाशित है अपने, तो फिर अरहंत भगवान ने इतनी मेहनत क्यों की, समोसन में बैठ करके और वहां से लेकर के और आज तक आचार्य सबसे भी बाजी चला आ रहा है ना। ये सबसे बड़ी समस्या है कि अग्नि गर्म है, अब वो खुद ही प्रकाशित तो गर्म है, गर्म है सिर्फ अपने को सिद्ध कर रही, तो इतना पंडित का है वो समझा रहे हैं कि अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है, अग्नि गर्म है ना। तो ज्ञान मात्र आत्म वस्तु अज्ञानियों की भी समझ में आ जावे, इस उद्देश्य से स्यादवाद का स्वरूप समझाया जाता है। जिनकी समझ में आ गई उनकी तो ठीक है, जिनकी नहीं आई उनकी भी समझ में आ जाए तो उसकी ये स्टाइल है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा हम कहते हैं क्योंकि स्यादवाद के बिना ज्ञान मात्र आत्मवस्तु की सिद्धि प्रसिद्धि संभव नहीं है, ये आचार्य कह रहे। आचार्य देव के उक्त कथन में यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि अनंत धर्मात्मक आत्म वस्तु को स्यादवाद से ही समझा जा सकता है, क्योंकि बिना अपेक्षा के वस्तु के स्वरूप को समझ पाना असंभव है। इसी बात को 14 बोलों के द्वारा पहले गद्य में फिर 14 छंदों द्वारा पद्य में विस्तार से समझाते हैं। अभी ये तो उन्होंने साधा सामान्य तरीके से समझाया, अभी 14 बोल उन्होंने बनाए हैं, वो उनको एक एक घर के लिए समझाएंगे। अब तथाही का मतलब तो आप जानते हैं, न्याय में उसी बात को विस्तार से कहते हैं, जो बात अभी तक कह दी है अब वही बात आगे विस्तार से समझाने वाले हैं, नई बात कुछ नहीं आएगी। यदि आपको रिपीटिशन लगे तो समझ लेना कि वही समझा रहे, तो उसमें रिपीटिशन तो हो गई ना। आप जानते हैं कि अष्टसहस्री में अष्टसती को उन्हें पूरी तरह समाहित कर लिया है, नहीं आया समझ? क्या पहले अकलंक देव ने 8वीं शताब्दी में उस सत्वासूत की टीका लिखी, कहिए मिल गया अष्ट उसकी देवागम स्त्रोत्र की, तो 800 श्लोक प्रमाण लिखी, तो वो 800 श्लोक प्रमाण की विद्यानंद जी ने 8000 श्लोक प्रमाण कर दी, माने 10 गुणी बड़ी टीका बनाई। तो वो 10 गुणी बड़ी टीका बनाई लेकिन अष्टसती का एक अंश भी नहीं छोड़ा, वो पूरी की पूरी अष्टसती उसमें शामिल कर दी। क्या तो अभी जो अष्टसती किसी ने अभी देखी हो किताब, तो उसमें जो थोड़े ब्लैक टैग में छपी है मोटे में, वो तो है अष्टसती वाला अंश, और जो उसके उसमें छपी है वो है अष्टसती वाला अंश। माने समझ लो कि उन 8000 श्लोक प्रमाण में 800 श्लोक प्रमाण तो अकलंक का मान समाया हुआ है, तो 7000 दो सही रहेगा ना उनका। राजवार्तिक भी आपने देखा है कभी, तो पढ़ा है तो देखा ही होगा, तो वो हरेक में एक पहले सूत्र जैसा लिख देते हैं और फिर छोटे टाइप में उसका उसी अर्थ को समझाते हैं। माने वही वृत्ति लिख देते हैं फिर उसे वार्तिक लिख देते हैं, वार्तिक लिख देते, वो वार्तिक हैं जो छोटे छोटे, और बाकी वो भाष्य लिख दिया उन्हीं ने। माने उन्हीं ने वो पहले संक्षेप में ऐसा लिख दिया और फिर उन्हीं को लगा ये समझ में नहीं आएगा तो उसी को फिर वैसे और विस्तार से समझा दिया, लेकिन उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब ये जो तुम्हारे चौदह को तथाही है, तो तथाही के बाद जो माल आएगा उसने जो समझाया है वो भी सब एब्जॉर्ब होगा, थोड़े शब्द बदल जाएंगे कुछ वैसे जो कुछ भी होगा, लेकिन वो बात तो आएगी। तुम क्यों रिपीट हो रही, वो तो समझाना तो वो ही है ना, समझाना तो उनको वो ही है और उसी को इस तरीके से समझाते हैं। पहले से आचार्यों ने जो कैसे कैसे तरीके से वो रचना की है, एक धनंजय नाम के महाकवि हुए, नाम तो सुना धनंजय का, तो उनका एक द्विसंधान महाकाव्य है, द्विसंधान महाकाव्य समझते हैं, तो एक अर्थ निकालो उसका तो पूरी राम की कहानी पढ़ लो, और दूसरा अर्थ निकालो तो पूरी कृष्ण की कहानी पढ़ लो, हर छंद है। यहां पर सीता अपहरण चल रहा है और वहां द्रौपदी अपहरण चल रहा है, वो घटना कहीं अलग है, यहां तो रावण ले जा रहा है और वहां तो भरी सभा में और द्रौपदी को पढ़ रहे, माने इतना विचित्र है, लेकिन वो इस तरीके से उन्होंने किया है। एक किताब और है अपने यहां पार्श्वाभ्युदय, नाम सुना नहीं सुना? उसमें क्या है मालूम, महाकवि कालिदास का मेघदूत नामक जो काव्य है उसमें कितने 52 छंद हैं, कितने हैं, इतने छंद हैं, तो उन सारे छंदों को पार्श्वाभ्युदय में पूरा पचा लिया, वो तीन पंक्तियां वो खुद लिखते हैं और एक पंक्ति कालिदास की और उसी में सेट करते होती जाती है, क्या कहानी आगे बढ़ती जाती है। और कहां पार्श्वनाथ की कहानी और कहां मेघदूत रामटेक से वो मेघों को भेज रहा है और वो सब वो बातें हैं, उस कवि ने पूरा का पूरा उसने समाहित कर लिया एक पंक्ति वो। लेकिन मैंने देखा है बहुत बारीकी से कि जैसे समन्त भद्र के बहुत एक स्तोत्र ऐसा है कि इसमें एकाक्षरी एक ही अक्षर है पूरा छंद में, दो अक्षरी ऐसा छंद है, फिर वही पद एक ऐसा पढ़ो और फिर उसको उल्टा पढ़ोगे तो वो दूसरा पद बन जाएगा। कैसे कैसे हैं कि आप देख के पारा बार महावीर तो महावीर वो लौटा करोगे तो उधर से वैसे का वैसा आ जाएगा प्रतिभाशाली आचार्य से, लेकिन उनमें कुछ माल नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि वो सारी ताकत वे उसमें लगाते रहे उस शब्दावली के खोजने में, वो शब्दावली नहीं मिले तो जो कहना चाहते वो तो कह ही नहीं सकते, वैसी कोरी कहानी चला दी आगे बस खत्म। तोड़ेमल जी ने भी कोशिश करी थी, नमो नमो नगन जैन जन नाना माते नाना पे, लेकिन उसमें एक तकलीफ बहुत है, फिर वो अर्थ करने वाले भी माथा मारते रहे। लेकिन मैंने कहा ना जैसे तोड़ेमल जी ने लिखा कि पंडित है वो पढ़ता ही बना तो दिखाए बिना तो रहे नहीं करे ना, चार शब्द तो वैसे बनाने की कोशिश करेगा ही लेकिन बिल्कुल नीरस हो जाता है। तुलसीदास जी ने बढ़िया रामायण लिखी, एकदम सरस बन गई। तो एक रामचंद्र का है कवि केशव ने लिखी, तो छंदों का अजायब घर हो गया, हजारों प्रकार के छंदों का उपयोग किया, तुमने नाम ही नहीं सुने होंगे, हर दफे छंद बदल दे, हर छंद छंद बदल दे, अब उन छंदों की परिभाषा किसी को मालूम नहीं, उसकी राग किसी को मालूम नहीं, कैसे पढ़े वो पर सामने वाला पढ़े, ऐसे ऐसे अलंकार ऐसे शब्दों का प्रयोग है, समझे ना सर क्या, हाँ काव्य कला का कठिन प्रेत क्या, अर्जुन भीम महामति लेखो पांडव की प्रतिमा सी देखो, एक चौपाई है उसकी क्या के? अर्जुन नाम का वृक्ष, वो एक भीम नाम का वृक्ष, अब अभी अर्जुन की छाल होती है ना जो वो हाथ में काम आती है ना, एक अपने साधारण पेड़ है कुआं कुआं कहलाता है बुंदेलखंड में, झाड़ियां की झाड़ियां लग रही हैं, उसका नाम है संस्कृत में अर्जुन, इतनी कटीली झाड़ियां कि वहां से निकलना मुश्किल, सबसे बढ़िया है वो पेड़। अब वो कहते अर्जुन भीम महामति लेखो और पांडव की पिता, उसे तो पांडवों से तुलना करने, तो उन पेड़ों के नाम ले रहे कि जहां वो कहीं वो पेड़ देखने में मिले ही नहीं। चंद्रदास जी कहते थे कि हम तो ऐसे पंडित हैं कि पूछें कि भाई ये क्या है, तो लेकिन वृक्ष वैसे बस एक इस जाति का कोई एक वृक्ष होता है, तो तुमने देखा कि नहीं, कोई ने देखा नहीं, वो चल रही है इस जाति का वृक्ष होता है, ऐसा एक कीड़ा होता है, एक ऐसा कोई मणि होता है जिसको चंद्रमा की किरणें पड़े तो पानी झरने लगता है, उसका नाम चंद्रकांत मणि है, तुमने देखा है कहीं, तुमने देखा तो आज किसी ने नहीं है, सूर्यकांत मणि में आग जलने लगती है, लेकिन जैसा देखें हीरे के बारे में कितनी कितनी कहानियां प्रचलित हैं, अभी इन जबेरियों से पूछते हैं लेकिन हमने तो ऐसा हीरा कहीं देखा नहीं है, कि जरा चाट ले तो मर जा, अंगूठी में ऐसा लगा है चाट ले तो मर जाता था, कहते थे ना भाई ऐसा तो भी हीरा है नहीं, उसे चाटने से मर गए, वो कहते थे हम ऐसे पंडित हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब कि यदि वस्तु स्वरूप समझना है तो इस पंडिताई से थोड़ा अलग होना पड़ेगा, लेकिन वो गुरुदेव की भाषा में क्या जान ही लो प्रयोजन वंश है, जान लो छोड़ दो एक दफे, फिर उसमें उलझो मत, फिर अपने उसमें माथा मत मारो, है ना, ज्यादा समय शक्ति खराब उसमें मत करो, लेकिन जान तो लो, क्योंकि ऐसी चीज हमारे सामने आएगी तो हम उससे निपट तो सकते हैं ना।